आस्तर बाब 9। फिर 12वें महीने अदार का 13वां दिन आ गया, जब बादशाह के फरमान पर अमल करना था। दुश्मनों ने उस दिन यहूदियों पर गालिब आने की उम्मीद रखी थी, लेकिन अब इसके उलट हुआ। यहूदी खुद उन पर गालिब आए जो उनसे नफरत रखते थे। सल्तनत के तमाम सूबों में वो अपने अपने शहरों में जमा हुए ताकि उन पर हमला करें जो उन्हें नुकसान पहुंचाता है। कोई उनका मुकाबला न कर सका क्योंकि दीगर तमाम कौमों के लोग उनसे डर गए थे। साथ साथ सूबों के शरफा, गवर्नरों, हाकिमों और दीगर शाही अफसरों ने यहूदियों की मदद की, क्योंकि मुर्दकी का खून उन पर तारी हो गया था और दरबार में उसके ऊंचे ओहदे और उसके बढ़ते हुए असर और रसूख की खबर तमाम सूबों में फैल गई थी। उस दिन यहूदियों ने अपने दुश्मनों को तलवार से मार डाला और हलाक करके नेस्तोनाबूद कर दिया। जो भी उनसे नफरत रखता था उसके साथ उन्होंने जो जी चाहा सलूक किया। सोसन के किले में उन्होंने 500 आदमियों को मार डाला, नेज यहूदियों के दुश्मन हामान के 10 बेटों को भी। उनके नाम पर्शन दाता, डलफोन, इपसाता, पुराता, अदलिया, अरिदाता, परमशता, अरीसी, अरिदी और वेजाता थे, लेकिन यहूदियों ने उनका माल न लूटा। उसी दिन बादशाह को इत्तला दी गई कि सोसन के किले में कितने अफराद हुए थे। तब उसने आस्तर मलका से कहा, सिर्फ यहां सोसन के किले में यहूदियों ने हामान के 10 बेटों के अलावा 500 आदमियों को मौत के घाट उतार दिया है, तो फिर उन्होंने दीगर सूबों में क्या कुछ न किया होगा। अब मुझे बताएं, आप मजीद क्या चाहती हैं? वो आपको दिया जाएगा। अपनी दरखास्त पेश करें क्योंकि वो पूरी की जाएगी। आस्तर ने जवाब दिया, अगर बादशाह को मंजूर हो तो सोसन के यहूदियों को इजाजत दी जाए कि वो आज की तरह कल भी अपने दुश्मनों पर हमला करें और हामान के 10 बेटों की लाशें सूली से लटकाई जाएं। बादशाह ने इजाजत दी तो सोसन में इसका ऐलान किया गया। तब हामान के 10 बेटों को सूली से लटका दिया गया और अगले दिन यानी महीने के 14वें दिन शहर के यहूदी दोबारा जमा हुए। इस बार उन्होंने 300 आदमियों को कत्ल किया, लेकिन उन्होंने किसी का माल न लूटा। सल्तनत के सूबों के बाकी यहूदी भी महीने के 13वें दिन अपने दफा के लिए जमा हुए थे। उन्होंने 75,000 दुश्मनों को कत्ल किया, लेकिन किसी का माल न लूटा। अब वो दोबारा चैन का सांस लेकर आराम की जिंदगी गुजार सकते थे। अगले दिन उन्होंने एक दूसरे की ज़ियाफ़त करके खुशी का बड़ा जश्न मनाया। सोसन के यहूदियों ने महीने के 13वें और 14वें दिन जमा होकर अपने दुश्मनों पर हमला किया, इसलिए उन्होंने 15वें दिन खुशी का बड़ा जश्न मनाया। यही वजह है कि देहात और खुले शहरों में रहने वाले यहूदी आज तक 12वें महीने के 14वें दिन के जश्न को अच्छे से मनाते हुए एक दूसरे की ज़ियाफ़त करते और एक दूसरे को तोहफे देते हैं। जो कुछ उस वक्त हुआ था उसे मुर्दकी ने कलमबंद किया। साथ साथ उसने फारसी सल्तनत के करीबी और दूर दराज के तमाम सूबों में आबाद यहूदियों को खत लिख दिए, जिनमें उसने ऐलान किया, अब से सालाना अदार महीने के 14वें और 15वें दिन जश्न मनाना है। खुशी मनाते हुए एक दूसरे की ज़ियाफ़त करना, एक दूसरे को तोहफे देना और गरीबों में खैरात तकसीम करना, क्योंकि इन दिनों के दौरान आपको अपने दुश्मनों से सुकून हासिल हुआ है। आपका दुख सुख में और आपका मातम शादमानी में बदल गया है। मुर्दकी की इन खिदमात और हिदायत के मुताबिक इन दो दिनों का जश्न दस्तूर बन गया। ईद का नाम पूरीम पड़ गया क्योंकि जब यहूदियों का दुश्मन हामान बिन हमदाता अजाजी उन सब को हलाक करने का मंसूबा बांध रहा था, तो उसने यहूदियों को मारने का सबसे मुबारक दिन मालूम करने के लिए कुरा बनाम पूर डाल दिया। जब अक्सुयरस को सब कुछ मालूम हुआ तो उसने हुक्म दिया कि हामान को वो सजा दी जाए جس کی تیاریاں اس نے یہودیوں کے لیے کی تھی، تب اسے اس کے بیٹوں سمیت پھانسی سے لٹکا دیا گیا۔ چونکہ یہودی اس تجربے سے گزرے تھے اور مردکی نے ہدایت دی تھی، اس لیے وہ متفق ہوئے کہ ہم سالانہ اسی وقت یہ دو دن عین ہدایات کے مطابق منائیں گے۔ یہ دستور نہ صرف ہمارا فرض ہے بلکہ ہماری اولاد اور ان غیر یہودیوں کا بھی جو یہودی مذہب میں شریک ہو جائیں گے۔ لازم ہے کہ جو کچھ ہوا ہر نسل اور ہر خاندان اسے یاد کر کے مناتا رہے، خواہ وہ کسی بھی صوبے یا شہر میں کیوں نہ ہو۔ ضروری ہے کہ یہودی پوریم کی عید منانے کا دستور کبھی نہ بھولیں کہ اس کی یاد ان کی اولاد میں سے کبھی بھی مٹ نہ جائے۔ ملکہ آستر بنت ابی خیل اور مدکی یہودی نے پورے اختیار کے ساتھ پوریم کی عید کے بارے میں ایک اور خط لکھ دیا تاکہ اس کی تصدیق ہو جائے۔ یہ خط فارسی سلطنت کے 127 صوبوں میں آباد تمام یہودیوں کو بھیجا گیا۔ سلامتی کی دعا اور اپنی وفاداری کا اظہار کرنے کے بعد ملکہ اور مردکی نے انہیں دوبارہ ہدایت کی، جس طرح ہم نے فرمایا ہے یہ عید لازماً متعین اور اوقات کے عین مطابق منانی ہے، اسے منانے کے لیے یوں متفق ہو جائیں جس طرح آپ نے اپنے اور اپنی اولاد کے لیے روزہ رکھنے اور ماتم کرنے کے دن مقرر کیے ہیں۔ اپنے اس فرمان سے آستر نے پوریم کی عید اور اسے منانے کے قواعد کی تصدیق کی اور یہ تاریخی کتاب میں درج کیا گیا۔